प्रातः क्लास है 26/2/66 शनिवार को बॉम्बे में मुरली चली। रिकॉर्ड है चले आज तुम जहां से, बच्चों को ओम शांति का अर्थ तो बता दिया है। ओम शांति अर्थात मैं आत्मा और मुझे आत्मा का स्वधर्म है शांत, और मैं आत्मा रहने वाली हूँ निराकार दुनिया वाले निर्वाण धाम में। बाण से परे बाण प्रस्थव स्थान पढ़ी जा चुकी है। छब्बीस 2/66 की वाणी दूसरा पेज है। भगवान आया है, आया था, फिर भी ये भी या भगाने वाला वो भगवान कौन सा है, वो आएगा ना। बाप बैठ करके समझाते हैं कि कृष्ण भगवान नहीं है, वो तो 16 कला संपूर्ण बनने वाला देवता है। गाते भी है मनुष्य देवता की ये करतन लागी बार, तो वो भगवान नहीं है। भगवान तो नरको नारायण जैसा देवता बनाने वाला है, न कृष्ण भगाने वाला जो तुम समझते हो। भागवत में सुनते आए हो कथा, तुम कहती थी कि कृष्ण भगा करके पटरानियां बनाते थे, पटरानियां कहाँ की बनाती थी, कोई स्थान होगा ना। आठ पटरानियां दिखाते हैं, आठ ही धर्म है, जो देवता धर्म से भिन्न है। उनके आठ अलग अलग धर्म खंड भी है। तो देवता बनते बनते पुरुषार्थ करते करते वो कोई के प्रभाव में आ गई। और पट्टे में गिर पड़ी तो नाम हो गया पटरानी। तो इस्लाम धर्म के प्रभाव में आई, वो क्रिश्चियन धर्म के प्रभाव में आई, को मुस्लिम धर्म के प्रभाव में आई, तो शास्त्रों में लिख दिया पटरानी बनाते थे। अच्छा, अटरानी भी बनाते थे तो फिर उनकी निंदा क्यों होनी चाहिए? इतनी आठ आठ पटरानियां कैसे बनानी है? तो देखो गालियां दे दी है ना, तो उनको इतनी पटरानियां थी, इतनी रानियां थी, बगा बगा के बनाया। अरे वो बात तो रंग है, बात कहते हैं कृष्ण तो आया ही नहीं है, जो उसकी इतनी कहानी सुनाई है कि मक्खन चुराता था, फलाना करता था, वो तो राजा ही के मक्खन की बात है। जो शास्त्रों में लिखा है वो तो एक भी बात सच्ची नहीं, सभी झूठ, मेरे ही झूठ। उन भगवान के ऊपर तो कोई कलंक लग ही नहीं सकता है। और नहीं वही चोरी के यहाँ जाकर के चोरी करते थे, बनाते थे, अरे वो कृष्ण अपना घर है, अपना महल छोड़ करके कहाँ बाहर जा सकते हैं? ये बात समझते हो? वो तो राजकुमार था, अपने बड़े महलों का राजकुमार था। तो ये सभी दंत कथाएं हैं। कि मक्खन की मटकियां चुराते थे, चीर हरण करते थे, मटकियां फोड़ते थे, हैं सभी दंत कथा की भक्ति मार्ग की दुर्गति में ले जाने की बातें। और दुर्गति भी क्यों कहें? तो ग्लानि करते हैं, तो जो भगवान की ग्लानि करते हैं उनकी दुर्गति तो होगी ना, ये तो पाप हो गया ना। भगवान है सदगति करने वाला, फिर बताई दिया वो दुर्गति करते थे। तो देखो दुर्गतियां करते करते इनकी रामचंद्र की, सीता की, कृष्ण की, फलाने की कि कितनी गालियां देते थे, पढ़ते पढ़ते जन्म जन्मांतर गालियां देते रहते हो। और जन्म जन्मांतर ये कथाएं सुनते आए हो, फिर रोज कथाएं सुनते रहते हो। तो देखो कितना पाप तुम्हारे ऊपर चढ़ गया है, भक्ति मार्ग में तुम पापात्मा कैसे बन गए? जिस भगवान ने आकर के सदगति की उसको दुर्गति करने वाला बना दिया। ये सब बातें बाप बैठ समझाते बताते हैं कि तुम पुण्यात्मा कैसे बनते हो, तो बाप बैठ करके बच्चों को समझाते समझाते हैं कि बच्चे मैं तो कल पहले भी आया था, जो भी पास हुआ है सिंध से लेकर के यहाँ तक वो कल्प कल्प होता ही रहता है और होता ही रहेगा। फिर भी आएंगे और बाबा आकर के इसमें प्रवेश करेंगे, कलकत्ते में आकर के प्रवेश करेंगे। इनको सब कुछ छोड़ा देंगे और फिर इन सबकी परवरिश करेंगे। जैसे सिंध हैदराबाद में की थी, वहां पाकिस्तान में भी की ना, सब मिलकर के रहते थे। तो ये फिर सब वही होगा, अभी सिर्फ वो ही नहीं होगा, ऐसे समझो कि सत्युग में हम देवी देवताएं थे, पवित्र थे, पीछा त्रेता में भी हम थे, क्योंकि हम जो भारतवासियों को 84 जन्म लेना पड़ा, ये 84 का चक्कर यहाँ गाया जाता है। 84 जन्म तो जरूर पहला जन्म सर्वगुण संपन्न होगा, 16 कला संपूर्ण होगा, सबका बहुत अच्छा जन्म था और यथा राजा तथा प्रजा, सारी प्रजा भी अच्छी थी, थे तो जरूर नंबरवार, क्योंकि सब तो राजा रानियां नहीं बन सकते। तुम सब राजा रानियां बन सकती हो क्या? सब साहूकार भी नहीं बन सकते, साहूकार गरीब वगैरह वगैरह ऐसे होते हैं ना, बहुत जरूर। बाप बैठ करके बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं कि हे भारतवासियों, तुम तो देवी देवता धर्म वाले थे, पीछे सत्युग और त्रेता में तुमने 8 जन्म 12 जन्म लिए, क्योंकि 84 जन्म का हिसाब तो चाहिए ना, बाद में और धर्मों में कन्वर्ट होते हैं। अच्छा, फिर ऐसे ही अपन को समझो कि हमने पार्ट ऐसा ऐसा धरा, यहाँ सत्युग में देवी देवता आराधनी, पीछे हमने पार्ट धरा त्रेता में राम राज्य चक्री धर्म, फिर हम नीचे आ गए रावण के राज्य में भिखारी बनी, फिर तो बाम मार्ग में गए, एक होता है बाम मार्ग, एक होता है दया मार्ग। झाड़ में जितने भी धर्म हैं, टहनियां दिखाई गई है, कोई दाई ओर गई है, कोई बाई ओर गई है। बाम मार्ग में जाने वाले धर्म वो सब दुविचारी बन गए, बाया हाथ होता है ना, गंध उठाने का काम बाएं हाथ से किया जाता है ना, तो देखो द्वापर में भी हम बरोबर है। 21 जन्म रहे, इतने 84 जन्म तो चाहिए। बाबा कहते हैं ना, तुम अपने 84 जन्मों को नहीं जानते हो, तुम भारतवासियों ने पूरे 84 जन्म शुरू से लेकर अंत तक लिए, दूसरे कोई भी धर्म वाले 84 जन्म नहीं लेते हैं। जो और धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं वो भी 84 जन्म नहीं लेते। ऐसे नहीं कहेंगे गुरु नानक का ये सिख धर्म, नहीं, वो गुरु नानक तो आया 500 वर्ष हुआ, उनका बहुत बहुत करके 12-14 जन्म होंगे, 84 जन्म नहीं होंगे, क्योंकि कलयुग के मध्यांत में आते हैं, नई नई आत्माएं आती हैं, तो उनकी ज्यादा उम्र होगी या कम होगी। जो भी नई आत्माएं परमधाम से उतरती हैं, उनकी एज ज्यादा होगी, एवरेज एज, या कम होगी नई आत्मा की, कम होगी, क्यों? रशियंस हैं, सबसे लास्ट में आते हैं, उनकी आयु अभी कितनी है एवरेज? 100-100, 125-125 वर्ष रहते हैं जिंदा। तो जो भी लास्ट में आती है नई नई आत्माएं पावरफुल आती है, तो उनकी एज लंबी होती है। तो वैसे हिसाब करें कि धर्म कब स्थापन हुआ, वहां से भेंट करें, ये हिसाब है ना। जबकि इन देवी देवताओं का 84 जन्म 5000 वर्ष है, तो अंत में आकर ये तो तमो प्रधान बन गए। इन भारतवासियों की एज 30-40 वर्ष रह गई एवरेज, तो फिर जो नई नई आत्माएं आवेंगी, सात्विक आत्माएं आवेंगी ना, उनमें तो पावर ज्यादा होती है, बीज में पावर ज्यादा होगी, तो पौधा या पेड़ सशक्त हुआ ना, तो फिर जो 2000 वर्ष पहले, 500 वर्ष पहले, 1200 वर्ष पहले आए, उनका कितना जन्म हुआ होगा? तो ये हिसाब हुआ, और ये हिसाब भी तो बहुत सहज समझने का है, अभी एक्यूरेट नहीं निकालना है कि इतना समय में इतना हुआ इनका। भाई ये किचन लोगों ने 2000 वर्ष में बेशक 60-1 जन्म लिया होगा, पुनर्जन्म तो लेते हैं ना, वृद्धि होती जाती है, पुनर्जन्म होती जाती है। अच्छा, अब तुम बच्चे दिल में अच्छी तरह से ये ख्याल करो, सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग, इन चारों युगों में हमने 84 जन्म भोगा। अभी ये सारा झाड़ जटिल भूत अवस्था को पा गया, तो फिर बाबा कहते हैं मैं आता हूं। जब सारा झाड़ जर्जरी भूत अवस्था को पाता है तो मैं यहाँ इस साधारण वेतन में आता हूं। ये बात ड्रामा में नूद है, और इस बात में कभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो भी पास हुआ है सतयुग से लेकर के समय तक वो ड्रामा है, जो बना है वो बनता ही है, चलता ही रहता है, रिपीट होता ही रहे। अभी तुमको बीएन की हिस्ट्री मिली, आते ये भी समझाते हैं कि भक्ति मार्ग में अंधश्रद्धा से गुरुओं की पूजा होती है, ब्लाइंड फेथ में भक्ति करते रहते हैं, जानते किसी को बड़े भले शिव के मंदिर बनाते हैं परंतु उनको मालूम नहीं है ये शिव कौन है। ये यादगार मंदिर क्यों बनाया है, और उनकी पूजा कौन करते हैं, वो ही लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, जिनको बाबा ने आकर के नर से नारायण बनाया था। अच्छा शिव की पूजा क्यों करते हैं, उन पत्तों को तो ये मालूम नहीं है कि शिव बाबा से हम सतयुग के लक्ष्मी नारायण बने थे। 26/2/66 की वाणी का तीसरा पेज, ये बात उनको मालूम ही नहीं पड़ती। भक्ति शुरू हो जाती है तो शुरू से ही यहां ब्लाइंड के, यानी ये भक्ति मार्ग ही ऐसा ब्लाइंड फेथ है। ये जिनकी पूजा करता था लक्ष्मी नारायण भिन्न नाम रूप में आ गए। 84 जन्म लेते हैं तो नाम रूप तो बदल जाते हैं ना, द्वापर से पुजारी बने। अच्छा पुजारी बनते हैं तो भी तो राजघराने के होते हैं ना, कौन लक्ष्मी नारायण। तो जिसने पहले पहले मंदिर बनाया वो पहले पहले लक्ष्मी नारायण था, वो जब पूजी से पुजारी बना तो उन्होंने पहले शुरू किया ये सोमनाथ मंदिर बनाने का, से नाम क्यों दिया? सोम चंद्रमा को कहा जाता है। नाक औरतों को नथनिया डाली जाती है ना, शादी होती है तो नथनिया डालते हैं। नाम यहां दिया सोमनाथ, अर्थात ज्ञान चंद्रमा का जो पाठ बजाने वाली आत्मा है उसको कंट्रोल में कर लिया। ऐसे भी देवताएं थे जो फिर बाम मार्ग में आ गए, वो कौन थे? जो 84 जन्म न लेने वाले थे, सत्युग में तो आए होंगे, 83 जन्म लिए तो सत्युग में तो आए, लेकिन कब कलाएं हो गई, कम जन्म हो गए, आत्मा कमजोर हो गई, बुद्धियोग पूरा बाप से लगाए नहीं सके, तो द्वापर युग से बाम मार्ग में चले जाते हैं। तो देखो इन देवताओं ने बहुत बनाया और बहुत धन था, ढेर का ढेर धन था, और फिर तुम लोग भी तो थे ना, तुम किसे कहा? जो सन्मुख होते हैं उनसे तुम कहा जाता है। तुम भी तो चलते आए हो ना, पुनर्जन्म लेते आए हो ना, अभी तुमने 84 जन्म पूरा किया, अभी बाबा आया हुआ है आकर के तुम्हारे 84 जन्मों की सारी हिस्ट्री जायोग्राफी समझाते हैं। तो अभी ये समझो इस ड्रामा में हम एक्टर्स हैं, आत्माएं सभी एक्टर्स हैं, और हमारा घर है शांति धाम या निर्माण धाम, जहां से सत्य रूपी रंगमंच पर हम पाठ बजाने आते हैं, यहां से दुनिया में आते हैं तो टाकी दुनिया है, निर्वाण धाम में वाणी है ही नहीं, वहां तो शांति ही शांति रहती है। अच्छा फिर आत्मा का स्वरूप क्या है? ये आत्मा कहां रहता है? तो बोलते हैं दिल्ली है, माताएं बिंदी लगाती है ना, कहते भी यहां भ्रकुटी के बीच चमकता है जब सितारा, तो वहां परमधाम में इन आत्माओं का जैसे कि झाड़ है, उस झाड़ में डीटी इस्लामी बौद्धी क्रिश्चियन इत्यादि इत्यादि ये सब है ना, ये रुद्र भी है, रौद्र रूप धारण करने वाला, जाड़ के चित्र में ऊपर दिखाया गया है ना। आत्माएं जा रही है परम धाम ले जाने वाला और रौद्र रूप धारण करने वाला, आत्माओं को खींचने वाला रुद्र शंकर के रूप में बैठा हुआ है। तो ऐसे कि जैसे यमुना ये झाड़ है जो ऊपर में बैठा हुआ है, यानी वो परमधाम में भी दूसरा झाड़ है आत्माओं का। तो बाप बैठ करके समझाते हैं, तुमको यहाँ आकर के राय देते हैं कि हे मेरे सभी बच्चों, अब मुझे याद, मैं तो सदैव ज्योति बिंदु हूँ, मेरा कार्य हूँ, तुम मुझे याद करते करते तुम देह को भूल जाएंगे, तुम भी निराकारी ज्योति बिंदु बन जाएंगे, तो बताओ क्या होगा? तुम्हारा देह से किया हुआ जो भी विकर्म है वो सब भस्म हो जाए, और ये एक ही उपाय है पाप कर्म भस्म करने का। क्योंकि मुझे बुलाते हैं पति से पावन आओ, तो किस लिए बुलाते हैं? तो मैं तुमको कैसे कहूंगा कि गंगा में स्नान करो जबकि तुम मुझे बुलाते हो? अरे ये गंगा पतित पावन हो रही है, वो तो इस षष्ठी की पर है ही है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में है ही है, उसको तो नहीं बुलाते, मेरे को बुलाते हो? मैं पतित पावन हूँ ना, पतितों को पावन कैसे बनाता हूँ? योग सिखलाता हूँ ना, योग मन क्या याद तो बाकी है, योग कब लगता है? याद तब आती है जब कोई से सुख मिला है, देखा है तो याद आएगी, कानों से सुना है तो याद आएगी, कोई भी इंद्रियों से अनुभव किया है तो याद जरूर आएगी। तो मैं कहता हूँ मुझे याद करो, अब सिर्फ कहने से मुझे याद करो ये बात पूरी हो जाएगी? कहने मात्र से पूरी होगी है? क्या करने याद करो, अभी तो बताया याद कैसे होगी, प्रैक्टिकल में याद कब आती है? जिसको अनुभव किया है वो याद आएगा ना। तो मैं यहाँ आकर के सिखलाता हूँ अभी, योग तो बहुत सिखलाते हैं, बहुत कहते हैं हम प्राचीन भारत का राजयोग सिखलाते। अच्छा उस योग से क्या हुआ था? हुँ? क्या हुआ था उस निराकारी स्टेज वालों को याद करते करते, तो साकार में निराकार आया था उसे याद करते करते हम भी क्या बन गए, निराकार बन गए। निराकार बन करके अपने पावन नाम ब्रह्मलोक पहुंच गए, गति हुई ना, गति माने दुर्गति माने गति माने ऊपर जाना, दुर्गति माने नीचे जाना। तो तुम्हारी गति हो गई परम धाम की ओर, ये बातें कोई जानता ही नहीं है। अभी तुमको योग सिखला रहा हूं, कैसे सिखला रहा हूं, मेरे साथ योग रखो। क्या मेरे साथ माम एकम याद करो, और कोई को याद न करो। और कोई कोई साथ संग का रंग लग गया तो याद आएगा या नहीं आएगा, है याद विचारी बनेगी या नहीं बनेगी, विचारी बन जाएगी। तो मैं तुम आत्माओं को कहता हूं, मैं कहा इसका मतलब कहने वाला साकार आत्मा नहीं है, वो निराकारी आत्मा है। मैं तुम आत्माओं को कहता हूं कि अपने घर से यानी बाप से योग रखो, एक तरफ कहते मुझे याद करो, फिर कहते अपने घर से योग रखो, तो दो बातें हो गई है, एक ही कैसे
ना।
हाँ तो घर अलग हो गया है, जहाँ मैं मुकर्रर रूप से रहता हूँ, इस दुनिया में आया हूँ, तो मैं तो एक व्यापी हूँ ना, तो जिसमें मैं हूँ वो मेरा घर हुआ ना, तो मुझे भी याद करो, मैं घर को याद करो। उस योग से क्या होगा, मेरे घर को याद करो क्या होगा, हाँ जिस तन में मैं आता हूँ तो उसको तो सबसे जास्ती संग का रंग लगता है, तो जिसको सबसे जास्ती संग का रंग लगेगा वो आत्मा तो पहले पहले निराकारी स्टेज में आ जाएगी ना। और मैं कहता हूँ मैं आता हूँ तो तुम बच्चों को आप समान बनाता हूँ, आप समान बना करके ले जाता हूँ। आप समान माने आत्मिक स्थिति में स्थिर करा के ले जाता हूँ, ऐसे नहीं मेरे अंदर देहवान है तो मेरे संग के रंग से तुमको देहवान लग जाएगा, ऐसे नहीं कि मैं जिस तन में प्रवेश करता हूँ उसमें संपूर्ण स्टेज में देहवान रहता है नहीं। वो भी जब संपूर्ण स्टेज बनती है जिसकी यादगार में वो चित्र बनाए जाते हैं, संगर क्या करता है, कुछ भी नहीं, क्योंकि करना धरना तो कर्म इंद्रियों से देह से होता है ना, और याद कर्म इंद्रियों से होती है, कर्म इंद्रियों से याद होती है नहीं, याद तो बुद्धि से होती है, लेकिन कर्मेंद्रियों से संग का रंग लगता है, तो जो संग का रंग लगता है वो संग का रंग मेरे को एक को याद करो, एक को मतलब ये नहीं कि बिंदी बिंदी मुझे एक बिंदी को याद करो, तो कैसे पता चलेगा कि एक बिंदी कौन सी? तो जब मुकर्रर रहता पता चलेगा, तभी पता चलेगा ना कि वो एक बिंदी किस रूप में मुकर्रर रूप से कार्य कर रही है। तो पूछा, उस घर को याद करने से क्या होगा? तुम्हारा जो विकर्म है बस वो विकर्म भस्म हो जाएगा। जैसे मेरी स्टेज है, मैं जिस तन में प्रवेश करता हूँ, सबसे पहले उस आत्मा की भी वो स्टेज बनती है, निराकारी। निराकारी स्टेज सदैव की बने माना विकर्म बस हो गई। विकार की खाद जल गई ना, तो क्यों याद आवेगी? तो अभी तुम जितना याद करेंगे उतनी तुम्हारी खाद निकलती जाएगी। ये याद की मुख्य बात है। चौरासी जन्मों को तो समझाई दिया, और फिर है दूसरी बात, पतित से पावन कैसे बनो? पतितों का संग करते करते पतित बन गए। अब एक पावन का संग करो, ये नालिश तो तुमको दे दिया कि षष्ठी का ये चौरासी का चक्कर तुम कैसे लेते हो, कैसे नीचे गिरते हो? चौरासी जन्म कर्म इंद्रियों से सुख भोगते भोगते तुम नीचे गिर गए। ऐसे नहीं द्वापर कलयुग में ही नीचे गए, सतयुग त्रेता में भी इंद्रियों से सुख भोगा या नहीं भोगा? हाँ इतना है कि सतयुग त्रेता में सूक्ष्म इंद्रियों से ज्ञान इंद्रियों से सुख भोगा, और द्वापर कलयुग में जो स्थूल इंद्रिया है उनसे सुख भोगा। तो सत्य त्रेता में तुम धीरे धीरे नीचे उतरते हो, द्वापर कलयुग में तेजी से नीचे गिरते हो। तो तुमने जाना कि चौरासी जन्म तुम कैसे लेते हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। क्या नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार? मान लो किसी ने बहुत याद का पुरुषार्थ किया तो चौरासी के चक्र में क्या अंतर आएगा जिन्होंने कम याद किया उनके मुकाबले? है नंबर वन में तो आएगा, लेकिन चौरासी जन्मों में क्या अंतर पड़ेगा?
मतलब
वो तो ठीक है तुरंत आएगा, लेकिन ये तो एक जन्म की बात हुई, चौरासी जन्मों में क्या अंतर पड़ेगा? कुछ अंतर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? है अंतर ये पड़ेगा कि जिसने बहुत याद करने की प्रैक्टिस की है तो अंत मते सो गते तो होती ही है। पहले जन्म में तो पहले पहले आएगा ही, लेकिन चौरासी जन्मों की जो शूटिंग हुई है वो याद करने की उसकी जाती हुई ना, तो चौरासी जन्मों में भी औरों के मुकाबले धीरे धीरे नीचे उतरेगा या जल्दी से नीचे उतर जाएगा? धीरे धीरे नीचे उतरेगा। तो देखो चौरासी जन्मों में या द्वापर कलयुग में सभी तो राजे नहीं बनते हैं, बनते जो राजयोग सीखने वाले हैं वो सभी राजे बनते हैं? नहीं बनते। बिल्कुल ही पवित्र थे और वहाँ यथा राजा रानी तथा प्रजा सभी पवित्र थे और अभी सभी पतित हैं। ये था राजा रानी तथा प्रजा, क्योंकि बड़े से बड़े थे ये राजा रानी, तो ये साधु संत तो कोई बड़े नहीं हुए, ये प्रजा वर्ग में है या राजा राजवर्ग में साधु संत, ये राजयोग सीखते हैं, राजयोग सीखते नहीं। मैं तो गृहस्थियों को आकर के राजयोग सिखाता हूँ, ये तो बड़े नहीं है। नहीं, हाँ वो गुरु लोग तो हुए, पोजीशन तो इन दुनिया इस दुनिया में उनका बड़ा है ना। तो बाप बैठ कर समझाते हैं, आगे भी तुमको कहा था परंतु उन साधु संतों ने कृष्ण का नाम डाल दिया कि कृष्ण ने कहा मन मना भव मध्याजी भव, ऐसी याद की गहराई में जा कि मेरे मन में समा जा, मेरे में समा जा, मध्याजी भव मेरे लिए यजन कर। यजन माने जो भी कर्म कर है ईश्वरीय सेवा का वो ईश्वर के लिए कर, पर वो मध्याजी भव और मन मना भव कहने वाला कृष्ण तो नहीं था। कृष्ण की आत्मा यानी ये जो नई थी नई दुनिया में वो अब पुरानी बनी है, उसमें भी आत्मा बैठी है। जो नई 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 सृष्टि में आई थी अभी पुरानी बन गई है, उसमें मुख्य है कृष्ण की आत्मा। जो 84 जन्म लेती और वो आत्मा अभी पतित बैठी है, कहते हैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म के भी अंत में मैं इसके तन में प्रवेश करता हूं, किसके शरीर में, किसके शरीर में प्रवेश करता हूँ, हैं? कृष्ण के शरीर में दादा लेख राज में प्रवेश करता हूँ या कोई और में प्रवेश करता हूँ? क्यों, कृष्ण की आत्मा नारायण नहीं मिलती फिर? हाँ वो नर से नारायण नहीं बनती डायरेक्ट, वो नर से प्रिंस बनेगी। और मैं तो नर को क्या बनाता हूँ एक ही जन्म में, बच्चे के रूप में जन्म नहीं मिलना है तुमको, तुम तो डायरेक्ट नर से नारायण बनते हो। तो देखो किसके तन में प्रवेश करता हूँ, वो ही नारायण। फिर कृष्ण पहले है नारायण तो बाद में लेते हैं, और उनको कहा जाता है भाग्य भाग्यशाली रथ किनको, कौन सा कृष्ण पहले है, सत्य जी या संगम जी कृष्ण, बाद में नारायण, उनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है। तो बरोबर भाग्यशाली हुआ ना, जिसमें मैं आकर के प्रवेश करता हूँ। क्यों भाग्यशाली रहते हैं? क्यों भाग्यशाली रहते हैं? यही तो भाग्यशाली हुआ ना, जो फिर पढ़ कर के पहले नंबर में आता है। कौन आता है पहले नंबर में? कितने नारायण हैं? टोटल नारायणों की संख्या कितनी? नौ नारायण, आठ नारायण, 870 होते हैं। संघ में के मुख्य नारायण को तो भूल गए, नौ नारायण है, नौ नाथ है, नाथ द्वारा कहा जाता है ना, नौ नाथ है, नौ नारायण है, नौ ही मुख्य धर्म पिता है, जो भगवान पर भरोसा करते हैं। तो वो ही कृष्ण पढ़ करके फिर नारायण बनता है। जैसे तुम सभी बनते हो, भाग्यशाली बनते हो ना। अब नंबर बार जो जितना पुरुषार्थ करते हैं उतने भाग्यशाली बनते हैं, परंतु मुख्य तो इनका नाम आएगा ना। किस तरफ इशारा किया? इनका कह के संगम की नारायण की तरफ, चित्र की तरफ इशारा किया। तो तुमको भी इनको फॉलो करना है, और फॉलो कर रहे हो ना बरोबर। तो बाबा और कोई तकलीफ किसी को नहीं देते हैं। हम भारतवासियों ने बरोबर 84 जन्म अभी पूरा किया, और हम अभी 84 जन्मों को जान गए। बाप ने आकर के हमको अपना बनाया, आगे भी कहा था तुमको जो गीता में लिखा हुआ है, हे अर्जुन तू अपने जन्मों को नहीं जानता, मैं तेरे को बताता हूँ। आगे भी तुम 84 जन्मों को नहीं जानते, अभी तुमको बैठ करके समझाते हैं कि तुम आज सनातन देवी देवता धर्म के थे, मध्य देवी देवता धर्म के नहीं थे, अंदर वाले देवी देवता है या क्षत्रिय नहीं थे, कौन थे? आज सनातन धर्म के थे। सनातन क्यों कहते हैं? है? सत्य को सनातन कहते हैं, सत्य सनातन धर्म कहा जाता है। सत्य बात अलग, सनातन बात अलग, सनातन माने पुराण। तो सनातन क्यों कहा जाता है? क्रिश्चियन धर्म क्यों कहा जाता है? मुस्लिम धर्म क्यों कहा जाता है? नहीं, मोहम्मद के नाम पर मुस्लिम धर्म नाम पड़ा, क्राइस्ट के नाम पर क्रिश्चियन धर्म नाम पड़ा, महात्मा बुद्ध के नाम पर बौद्ध धर्म नाम पड़ा। तो तुम्हारा सनातन धर्म नाम कैसे पड़ा? जरूर है, ब्रह्मा के चार पुत्र हैं, जिनमें से बड़े पुत्र का नाम सनत कुमार, सनत के नाम पर सनातन नाम पड़ा। तो तुम हिंदू धर्म के नहीं हो, सत्य सनातन देवी देवता धर्म के हो। अब बताओ तुमने हिंदू धर्म क्यों कहलाया? कौन? हिंदू? हिंग माने हिंसा, धू माने धूते, माने नष्ट करने वाले। तो हिंदू हिंसा को नष्ट करने वाले हैं। तो हिंदू धर्म क्यों नाम कहलाया? नहीं, जो कन्वर्ट होते हैं ना और धर्मों में, नारायण हो कमकला वाले या उनके पारू वर्ष हो, वो जो अब दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते गए, तब तुमने नाम धराय लिया हिंदू। हिंदू धर्म के तुम नहीं हो। वास्तव में ये नाम धराने, हिंदू धर्म कहलाने की शूटिंग यहाँ हो रही है। संगम दो प्रकार के ब्रह्मा कुमार हैं, एक मुखवंशावली, मुखवंशावली तो जो पूर्ववंशावली ब्राह्मण हैं, जो मुख की बोली हुई बात मुरलियों को नहीं मानते, वो मुखवंशावली अभी ये समझे बैठे हैं कि हम हिंसा काम विकार की दूर करने वाले हैं। और ये जो एडवांस पार्टी है, शंकर पार्टी है, ये हिंसा बढ़ा रही है। इसलिए हम आजकल हिंदू हैं। हिंद माने काम विकार की हिंसा, और दूर माने दूर करने वाले। तो यहाँ से फाउंडेशन पड़ा हिंदू कहने। अरे तुम तो हिंदू धर्म के नहीं हो, क्यों अपने को हिंदू धर्म कहलाया? कि तुम धर्म श्रेष्ठ और सर्वश्रेष्ठ थे ना? पीछे रावण आया तो धर्म भ्रष्ट और कर्म भ्रष्ट हो गए। अपन को देवी देवता कहलाने से लज्जा आने लगी। आने लगी, इसलिए तुमने सत्य सनातन देवी देवता धर्म का नाम बदल करके हिंदू कहलाना शुरू कर दिया। अभी वास्तव में तुम हो वो ही कौन? देवी देवता सत्य सनातन धर्म वाले, कोई हिंदू नहीं हो तुम। आज सनातन देवी देवता धर्म के ही हो और तुमने ही 84 जन्म भोगे। क्यों हिंदू कहते हो? क्योंकि तुम पतित बन गए थे। तुम किससे कहा? उनको कुखवंशावली ब्राह्मणों को तुम कहा, या एडवांस पार्टी में जो रुद्रमाला के मानते हैं उनको तुम कहा? तुम पतित बन गए। अभी भी तुम हो यहाँ, तो कोई दूसरा भारतवासी नहीं है। दूसरा माने जो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होकर चला गया हो, बौद्ध धर्म में कन्वर्ट होकर के चला गया हो, वो दूसरे भारतवासी हुए। अभी तुम सभी भारतवासियों के लिए ये बात है, हिंदू कहलाने वाले बन गए। अभी जाना तो सबको है, परंतु पहले किसको जाना है? जो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होंगे वो भी यहाँ है मौजूद। ब्राह्मण तो है ना, और जो असल देवी देवता धर्म के हैं वो भी मौजूद है। परंतु पहले किसको जाना है घर में? परमधाम में, ब्रह्म निर्वाण धाम। तुम भारतवासियों को जाना है, जिनको कहते हैं सनातन, आदि सनातन। तो आदि सनातन सत्युत के फर्स्ट जन्म वालों को कहेंगे या संगम युग वालों को कहेंगे? आदि कहाँ से हुई? संगम से आदि हुई। तो तुमको पहले जाना है जरूर, क्योंकि आना ही फिर तुम भारतवासियों को ही है देवता बनने के लिए। तो पहले तुम जाएंगे। तो देखो ये बारात है, ये शिव बाबा बारात लेके जाते हैं, वो है सभी का बाप, परंतु बारात जब जाती है तो आगे पीछे कुछ होते हैं या नहीं होते हैं? पहले घराती होते हैं फिर बाराती होते हैं। फादर भी तो कह देते हैं ना, पहले तो सजनिया छीछी समोपदान हो गई, तो उनको पहले गुलगुल करेंगे, सत्रप्रधान बना देंगे, पावन बना देंगे, फिर इन सजनियों को सागर ले जाएंगे। क्योंकि जो आत्मे तकित बन गई हैं, उनको पावन बना करके साथ में ले जाएंगे। जिसको बरोबर कहा जाता है लिबरेटर गाइड, दुख से छुड़ाते हैं तो लिबरेटर हुआ, फिर हमको शांति धाम में ले जा रहे हैं। कौन कौन ले जा रहे हैं? है? अरे नाम क्या दें, कौन ले जा रहे हैं? जब अंतिम विनाश होगा तो शिव बाबा इस सृष्टि पर होगा,
साकार होगा
है, इसलिए बोला कौन ले जा रहे हैं? बाबा ले जा, वो साकार जो झाड़ के चित्र के ऊपर दिखाया है। तुम बच्चों को नैनों पर बिठा कर ले जाऊंगा, तो दो आंखों पे इतनी 500 करोड़ आत्माएं कैसे बैठेंगी? चलो नंबर बार बैठेंगी तो दृष्टि से खींचने की बात है ना, बाबा ले जा रहे, बाबा साकार निराकार को कहा जाता है। तो बताओ कौन सा बाबा? बेहद का बाबा। हद कहते हैं 200-250 करोड़ क्रिश्चियंस का बाप, वो हद का बाप है या बेहद का बाबा है? क्या कहें? हद का। और जो सारी मनुष्य शक्ति का पिता है वो भी बेहद है, और आत्माओं का जो बाप है वो भी बेहद है। अच्छा ओम शांति।